कार्तिका इस वक्त एक पार्क में बैठी हुई थी और उसकी गोद में आहान और चाहत का बच्चा था। उस वक्त शाम के लगभग 6 बजने को आ रहे थे। पूरे दिन से कार्तिका बच्चे को छुपाते हुए घूम रही थी। कार्तिका ने अपना मोबाइल बंद कर लिया था ताकि कोई उसे गलती से भी न ढूंढ सके। उसे लगा था कि अक्षरा के घर का गार्ड उसे कार्तिका के आने के बारे में इन्फॉर्म कर देगा, लेकिन गार्ड ने इस बात को इतना ज़रूरी नहीं समझा। इस चक्कर में कार्तिका दर दर की ठोकरें खा रही थी। कार्तिका मुश्किल से ही बच्चे को संभाल पा रही थी। ऊपर से वो काफ़ी छोटा भी था और भूखा भी हो गया था। इस बीच धैर्य की तबीयत भी काफ़ी बिगड़ गई थी। वो बेहोश हो गया था। ये देखकर कार्तिका के चेहरे का रंग उड़ गया था। कार्तिका ने धीरे से धैर्य की गर्दन पर हाथ रखा तो उसकी सांसें काफ़ी धीमी चल रही थी। उसका शरीर आग की भांति तप रहा था। कार्तिका ने घबराकर धैर्य को अपने सीने से लगा लिया। उसने भारी आवाज़ में कहा, इसकी हालत तो बिगड़ती जा रही है। अगर इसे मैं हॉस्पिटल लेकर नहीं गई तो बच्चे की जान चली जाएगी। मैंने अपना काम कर दिया है अक्षरा दीदी, फिर आप मुझे क्यों इग्नोर कर रही हैं? कार्तिका ने जल्दी से धैर्य को अपनी गोद में उठाया और फिर वहां से सीधे हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गई। वो उस अस्पताल पहुंची जहां पर वो काम करती थी, लेकिन दरवाजे के बाहर पुलिस को देखकर कार्तिका के कदम वहीं रुक गए थे। उसे समझने में देर नहीं लगी कि अब तक तो आहान ने धैर्य को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया होगा। यहां गई तो आसानी से पकड़ी जाऊंगी, लेकिन बच्चे का ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो इसकी जान भी जा सकती है, कार्तिका ने मन ही मन कहा। कार्तिका काफी फंसा हुआ महसूस कर रही थी। तभी उसकी नज़र एक होर्डिंग पर गई। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के एडवर्टाइजमेंट का होर्डिंग था। कार्तिका को कुछ समझ नहीं आया तो वो तुरंत बच्चे को लेकर उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गई। कार्तिका की किस्मत अच्छी थी कि वहां काफी भीड़भाड़ होने की वजह से किसी ने उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। वो जैसे तैसे भीड़ में घुसकर सीधे डॉक्टर के पास पहुंचकर बोली, प्लीज़ आप पहले मेरे बच्चे को देख लीजिए, इसे क्या हो गया है? इसे बहुत तेज़ फीवर है, लगता है ये बेहोश हो गया है। डॉक्टर ने घूरकर कार्तिका की तरफ देखा और फिर धैर्य को चेक करने लगी। डॉक्टर जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई और कार्तिका से बोली, कैसी माँ हो तुम? तुम्हारा बच्चा इस हालत में पहुँच गया है और तुम इसे अब हॉस्पिटल लेकर आई हो? कितने दिनों का है ये? ये बस एक हफ्ते का है, मुझे लगा नॉर्मल बुखार है तो उतर जाएगा, कार्तिका ने सुबकते हुए कहा। वो धैर्य के लिए परेशान हो रही थी, इसलिए डॉक्टर को भी उस पर शक नहीं हुआ। उसे यही लगा कि वो कार्तिका का बच्चा है। बच्चा यहाँ बुखार से तप रहा है और तुम्हें ये नॉर्मल बुखार लग रहा है, लाओ मुझे इसे, डॉक्टर ने हल्के गुस्से में कहा। कार्तिका को अच्छा खासा सुनने के बाद वो बच्चे को लेकर चाइल्ड वार्ड में गई। कार्तिका भी दौड़ते हुए उसके पीछे पीछे जा रही थी। वो मन ही मन दुआ कर रही थी कि धैर्य बिल्कुल ठीक हो जाए। वहीं उनसे अलग आहान जब घर पहुंचा तब चाहत को धैर्य के गायब होने की खबर मिल चुकी थी। वो दौड़ते हुए बाहर जा रही थी कि तभी आहान से टकरा गई। आहान को देखते ही चाहत उसके गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। आहान, आप अकेले क्यों आए हैं? चाहत रोते हुए आहान से अलग हुई और आगे बोली, मॉम ने मुझे कहा था कि धैर्य की तबीयत खराब है और आप उसे लेकर हॉस्पिटल गए हैं, पर अब तो कुछ और ही पता चल रहा है। जरूर उस राजवीर शर्मा ने ये किया होगा। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, प्लीज उसे ला कर दीजिए। आपने प्रॉमिस किया था कि आप उसे प्रोटेक्ट करेंगे। चाहत बिल्कुल पागलों की तरह रोए जा रही थी, जबकि आहान सर्द निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। गुस्से से उसकी मुठ्ठियाँ कसी हुई थीं। उसे खुद पर सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने बच्चे और चाहत की सिक्योरिटी के लिए इतनी सावधानी बरती थी, फिर वो कार्तिका पर यकीन कैसे कर सकता था? इस बात का उसे मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। आहान ने चाहत के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हम उसे ढूंढ लेंगे, तुम अंदर चलो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही है। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, पहले मुझे मेरा धैर्य अपने पास चाहिए। आपके होते हुए भी राजवीर शर्मा कैसे उसे लेकर जा सकता है? आखिर वो इंसान चाहता क्या है? क्यों मेरे और मेरे बच्चे के पीछे पड़ा है? उससे बोलो कि मेरी जान ले ले पर मेरे बच्चे को छोड़ दे, चाहत ने रोते हुए कहा। उसे अभी भी यही लग रहा था कि राजवीर ने ही धैर्य को किडनैप किया है। चाहत अपना आपा खो रही थी। आहान ने उसे अपने सीने से लगाया और सहलाते हुए कहा, इस बार ये उसने नहीं किया है, पर आई प्रॉमिस मैं उसे ढूंढ लूंगा। चाहत ने सिर उठाकर हैरानी से आहान की तरफ देखा। उसने धीरे से पूछा, तो फिर किसने किया है ये? ये कार्तिका ने किया है, आहान ने जवाब दिया, जिसे सुनकर चाहत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। उसे पहले ही कार्तिका पसंद नहीं थी और उससे एक अजीब सी वाइब आती थी। चाहत ने धीरे से बड़बड़ाकर कहा, पता नहीं क्यों वो लड़की मुझे पहले से ही पसंद नहीं थी, पर वो मेरे बच्चे को किडनैप क्यों करेगी आहान? ये सवाल तो आहान को भी परेशान कर रहा था कि आखिर कार्तिका उसके बच्चे को किडनैप करके क्यों लेकर गई है। अगर बात पैसे की थी तो वो आयुष की पत्नी बनकर ओबेरॉय इंडस्ट्रीज की आधी मालकिन बन सकती थी, फिर ऐसे में उसने धैर्य को किडनैप करके उसे टारगेट क्यों किया? आहान चाहत को संभाल रहा था, साथ ही उसके दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। तभी आयुष पुलिस के साथ वहां पहुंचा। उसे देखते ही आहान चाहत से अलग हो गया था। आयुष को भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी क्योंकि सुबह उसने आहान पर यकीन नहीं किया था। आयुष आहान के सामने आकर नजरें झुकाकर धीमी आवाज में बोला, सुबह से पुलिस उसे सब जगह ढूंढ रही है लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही है। वो मुंबई में ही है, अगर बाहर जाती तो हमें खबर मिल जाती। आसपास की दुकानों पर भी चेक करो, जरूर उसने बेबी फूड खरीदा होगा, इतनी देर तक वो बच्चे को भूखा नहीं रखेगी, आहान ने बिना किसी भाव के कहा। उन लोगों के सामने खुद को मजबूत दिखाकर अपने इमोशंस छुपाना आहान बखूबी कर रहा था, लेकिन दिल ही दिल में उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। आयुष ने उसकी बात पर हामी भरी और वापस बाहर जाने लगा। अचानक वो कुछ कदम चलकर आहान की तरफ पलटकर बोला, चिंता मत कीजिए भाई, हम हमारे धैर्य को ढूंढ लेंगे और जिसने भी ये किया है उसे इसकी कड़ी सजा मिलेगी। आहान ने बिना कुछ बोले हामी सिर हिला दिया था, फिर उसने चाहत का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले जाने लगा। चाहत वहीं रुकने की जिद कर रही थी, उसने रोते हुए नामे सिर हिलाकर कहा, प्लीज आहान, मुझे भी धैर्य को ढूंढने आयुष के साथ जाना है, वो पता नहीं कब से गायब है, उसे भूख लगी होगी ना, वो मेरे बिना एक मिनट भी नहीं रह पा रहा होगा। चाहत जिद कर रही थी और उसकी हालत भी सही नहीं थी। आहान ने उसे अपनी बाहों में उठाया और जबरदस्ती अंदर ले जाने लगा। शिवानी दूर खड़ी उन सबको देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। पता नहीं क्यों सब जब ठीक होने लगता है तब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। इतनी मुश्किल से मेरे आहान की जिंदगी में खुशियां आई थी और फिर से उन खुशियों को बुरी नजर लग गई, शिवानी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। आहान अकेला ज्यादा देर तक चाहत को अकेले नहीं संभाल सकता था, उसने तनु और श्रद्धा को कॉल करके सब कुछ बता दिया था। वो दोनों वहां पर आ गई थी और चाहत को समझाने की कोशिश कर रही थी। तनु ने चाहत का हाथ सहलाते हुए कहा, चाहत जब तक तुम आहान को जाने नहीं दोगी तब तक वो धैर्य को ढूंढकर तुम्हारे पास कैसे लेकर आएगा। मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस खुद उनके साथ जाना चाहती हूँ, प्लीज आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं, मेरा बच्चा खो गया है और आप लोग मुझे यहाँ घर बैठकर आराम करने को बोल रहे हैं, चाहत ने गुस्से में तेज आवाज में कहा।
वो फिर से उठकर जाने की जिद करने लगी। तनु ने आहान की तरफ देखा और उसे बाहर आने का इशारा किया। कुछ देर चाहत को श्रद्धा के पास छोड़कर तनु आहान के साथ बाहर आई। तनु ने धीमी और भारी आवाज में कहा, अगर यही चलता रहा तो इसकी तबीयत भी खराब हो जाएगी आहान, मुझे लगता है हमें इसे मेडिसिन देकर कुछ देर के लिए सुला देना चाहिए, तब तक तुम्हें उसे ढूंढने का टाइम भी मिल जाए, वरना ऐसी हालत में तुम इसे छोड़कर बाहर नहीं जा पाओगे, मैं इसकी इजाज़त तुम्हें कभी नहीं देता, लेकिन मुझे भी यही लगता है कि चाहत को आराम की जरूरत है। आहान ने उसे इनडायरेक्टली चाहत को नींद का इंजेक्शन लगाने की हामी भर दी थी। तनु ने एक हाउस हेल्पर को भेजकर पास के मेडिकल से कुछ दवाइयां मंगवाईं और फिर उसने चाहत को इंजेक्शन देकर सुला दिया था। हालांकि नींद में भी चाहत बार बार धैर्य का नाम बड़बड़ा रही थी। चाहत के सोते ही श्रद्धा ने आहान से कहा, इसे संभालने के चक्कर में आप पहले ही काफी टाइम खराब कर चुके हैं, प्लीज अब जल्दी से हमारे धैर्य को हमारे पास ले आइए जीजू, इस बार चाहत को होश आने पर हम उसे झूठ नहीं बोलना चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि धैर्य उसके गोद में आए, उम्मीद है यही हो, आहान ने जवाब दिया और फिर तेज कदमों से चलते हुए बाहर चला गया। वो अपनी गाड़ी में बैठा ही था कि उसके पास मोंटी का कॉल आया। कॉल रिसीव करते ही आहान ने कहा, प्लीज मोंटी कोई बैड न्यूज मत देना क्योंकि इसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। नहीं सर, खबर अच्छी ही है, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन वो लड़की कार्तिका अक्षरा गोयंका की मासी की बेटी है, हो ना हो ये काम अक्षरा ने करवाया होगा। जैसे ही मोंटी ने बताया आहान के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने अक्षरा को सबक सिखाने के बाद उसकी खबर तक नहीं ली थी, उसे एहसास तक नहीं था कि उसके पीठ पीछे अक्षरा इतना बड़ा गेम खेल सकती है। तो क्या लगता है मोंटी, कार्तिका इस वक्त अक्षरा के घर पर होगी, आहान ने पूछा। मैंने पता किया है कि वो वहां पर गई थी पर उसे रात को गार्ड्स ने अंदर नहीं आने दिया। आसपास के लोगों से खबर मिली है सर, थोड़ी देर पहले कार्तिका को एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखा गया था, जरूर बच्चा बीमार है और इस वक्त वहीं पर एडमिट है, मोंटी ने बताया। उसकी बात सुनकर गुस्से में आहान की मुट्ठी कस गई थी, उसका बच्चा बीमार तक हो गया था, वो भी थोड़े ही घंटों में, ये सब अक्षरा और कार्तिका की वजह से हो रहा था। आहान ने सर्द आवाज में कहा, मुझे हॉस्पिटल की लोकेशन दो और मैं नहीं चाहता कि हमसे पहले पुलिस वहां पहुंच जाए, मुझे उस लड़की से अपने तरीके से निपटना है। मोंटी ने उसकी बात पर हामी खरी और उसे तुरंत लोकेशन भेज दी थी। आहान इस वक्त उस हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गया। आहान की गाड़ी इस वक्त हवा से बातें कर रही थी क्योंकि उसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना था। वहीं उन सबसे अनजान अक्षरा को अब तक ये खबर नहीं मिली थी कि कार्तिका आहान के बच्चे को चुरा चुकी है। कार्तिका भी इस वक्त अस्पताल में डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रखी थी क्योंकि जिस तरह से धैर्य की हालत थी, एक नर्स होने के नाते वो समझ सकती थी कि ऐसे में उसकी जान भी जा सकती है। एक तरफ जहां कार्तिका धैर्य के कमरे के आगे घबरा कर डॉक्टर के आने का इंतजार कर रही थी, तो वहीं आहान हॉस्पिटल में कदम रख चुका था। उसके कदम इस वक्त सीधे चाइल्ड वार्ड की तरफ बढ़ रहे थे। आहान के चेहरे पर गुस्से के गहरे भाव थे। उसने अपने बच्चों को तो ढूंढ लिया था पर अब कार्तिका की जिंदगी बर्बाद होने वाली थी। क्या लगता है आहान कार्तिका को पकड़ लेगा? ऐसा हुआ तो अक्षरा की खैर नहीं। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले चैप्टर पर मिलते हैं। आप मेरी बाकी की कहानियां ट्राई कर सकते हैं, आपको अच्छी लगेंगी।